मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे विषय की जो एक ओरिजिनल समझ होती है विषय के बारे में मैं उस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। पहली बात कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति घोषित की। हर दो महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करती है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि हर दो महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कदम उठाती है और हम लोग लगातार इस पर बात करते रहे हैं, तो बात करने की जरूरत मैं अभी नहीं समझता हूं। हो सकता है कि नेक्स्ट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति घोषित करेगी तो मैं उस पर बात करूं। लेकिन जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है या जो लेसन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होता जब प्री एग्जामिनेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कोई ना कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट होता है और एक दो क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो समझ है आपको 100 में से कम 3 क्वेश्चंस सही करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, समझें, उसकी प्रैक्टिकलिटी पर जाएं। केवल पढ़ने से और रट लेने से बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस बीच में आपने खबर पढ़ी कि हमारे यहां उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया है। जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। तो इनकी जो चुनाव प्रणाली है इसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। बहुत अच्छी समझ का मतलब है कि क्या फार्मूला है इसका। खासकर जो राष्ट्रपति के चुनाव का फार्मूला है वो अपने आप में थोड़ा सा जटिल किस्म का है, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो बिल्कुल सीधे तरीके से होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसमें मतदान करते हैं और फैसला हो जाता है। यहां जो मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स दूंगा विचार करने के लिए, आप इस पर विचार कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के किताबों में कहीं कुछ आपको पढ़ने को मिला होगा या मिलेगा। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि मैं आपके मेंस का पेपर तैयार कर रहा हूं, जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर, और मैं उसमें एक प्रश्न आपको देता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक है, स्पष्ट कीजिए। अब आप इस पर बिंदु सोचिए कि आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं और वो प्रश्न यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक उसी तरह से राज्यसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। यह कितना सही होगा, इस पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि हमारे यहां जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति होंगे। क्या वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को देखते हुए इसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, इस पर भी विचार कीजिए। मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं, ज्यादा मत सोचिए। मैं 200 शब्दों में भी आपको लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं लिखने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल पॉइंट्स निकालने के लिए कह रहा हूं। इनके लिए आप अलग अलग पॉइंट्स निकालिए। मैंने 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट्स निकालिए। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, मतलब किन किन पॉइंट्स को आप हैंडल करेंगे, करके देखिए। दोस्तों, पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे कहा था कि जो विचार करने की क्षमता है वो बहुत बड़ी क्षमता होती है और उसके बिना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के आंसर लिख पाना संभव नहीं होगा। आप चाहे मेरी बात माने या न माने, स्वीकार करें या स्वीकार न करें, लेकिन अंततः सत्य तो यही है। फ्रेंड्स, एक जो दूसरी खबर है वो है आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के, और इस पर दैनिक जागरण ने जो अपना एडिटोरियल कमेंट लिखा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और खासकर जो आत्मनिर्भरता की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, स्पेशली कृषि के क्षेत्र में कही है, कि हमें इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। इसे आप पढ़ लें और कुछ तथ्य निकाल लें। देखिए, आप अगर बहुत गोलमोल तरीके से आंसर देंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए हम गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम अब दलहन के मामलों में लगभग लगभग आत्मनिर्भर होने के करीब है, हुए नहीं है, लेकिन हम तिलहन के मामले में अभी बहुत पिछड़े हुए। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट आपको जब मालूम होंगे तब फिर आप कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रश्न को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल कमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक इसी तरह से मैं आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, और वो ये है कि YouTube पर अभी अभी मेरा एक लेक्चर डाला गया है, और वो है इस बात पर कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को आप समझें, इतिहास जनरली है क्या। और इसके माध्यम से ही मैं आज आपसे कुछ अपने मन की बातें शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मैं बार बार ये बात कहता हूं, और मैं ही नहीं कहता हूं बल्कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो भी यही बात कहते हैं, क्योंकि यही सच है। और वो ये कि आपको सब्जेक्ट को रटना नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ना भी नहीं है कि केवल पढ़ रहे हैं कि 7 रीडिंग कर ली 10 रीडिंग कर ली। आपको सब्जेक्ट को समझना है, और समझने के लिए 10 रीडिंग की और 5 रीडिंग की जरूरत नहीं होती है। मैं समझता हूं कि 3-4 रीडिंग अपने आप में पर्याप्त होते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए, यहां तक कि आप 2-3 रीडिंग में भी समझ सकते हैं। इसके बाद तो फिर रिवीजन का दौर होता है, रीडिंग का दौर खत्म हो जाता है। रीडिंग और रिवीजन में फर्क है। अब सवाल यह उठता है कि आप विषय को समझेंगे कैसे, विषय को पढ़ लेंगे या विषय को रट भी लेंगे लेकिन समझेंगे कैसे। तो जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि भाई जिस विषय को मैं पढ़ रहा हूं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक मुझे यह नहीं मालूम होगा कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या, इसका चरित्र क्या है, तब तक आप बताइए कि आप कैसे उसको समझेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ना कि नहीं ये मिट्टी है, नहीं ये लकड़ी है, नहीं ये सोना है, नहीं ये लोहा है। अगर आपको मालूम है कि ये सोना है और इससे आपको कोई आभूषण बनाना है, तो आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि प्योर गोल्ड से आप आभूषण नहीं बना सकते, उसमें थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ेगी, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लोहे के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टील बनाना होगा तो फिर आपको फिर उसका फार्मूला चाहिए। तो जैसे हर धातु की या इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम उनके चरित्र को जानते हैं तभी उनके साथ सही रूप में व्यवहार कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट के साथ भी होता है। आपको जानना ही चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दरअसल है क्या। और मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज, वो शायद 1.25 घंटे का लेक्चर है, हालांकि मुझे मालूम है कि आज के समय में अगर मैं कहूं कि 1.25 घंटे का लेक्चर है तो आप घबराने लगे कि बाप रे 1.25 घंटे हमारे पास कहां है, कहां से निकालेंगे। ये बात अलग है कि आप उसी के समानांतर स्मार्टफोन के साथ 2.25 घंटे 3 घंटे निकाल देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब 1.25 घंटे के लेक्चर की बात कही जाएगी तो एक बार तो आप थोड़ा सा ठिठकेंगे कि अरे बाप रे 1.25 घंटे कैसे निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूंगा, जोर देकर के कहूंगा कि प्लीज आप ऐसा करें, एक्सपेरिमेंट के बतौर पर कीजिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, हिस्ट्री की तैयारी आपने या तो कर ली होगी या कर रहे होंगे या आगे जाकर के करेंगे, थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो आपको मालूम भी होगी। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट ये कीजिए कि उस लेक्चर को सुनिए और इत्मीनान के साथ सुनिए, है ना, कहानी किस्सों की तरह नहीं, धार्मिक कथा की तरह नहीं, एक ज्ञान की बातों की तरह, कि वहां जो कहा जा रहा है उसका कोई अर्थ है, उन्हें आपको समझना है, उन पर ध्यान देना है, उन पर गौर फरमाना है। इस तरीके से सुनिए, इत्मीनान के साथ सुनिए, ये नहीं कि मस्ती में झूम भी रहे हैं और गप भी मार रहे हैं और इधर आपका फोन भी चल रहा है और आपने सुन लिए, उससे बात नहीं बनेगी। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप एक्सपेरिमेंट ही मत कीजिए, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, रिजल्ट आधे अधूरे मिलेंगे, आप छोड़ छाड़ करके किनारे हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, और हो सकता है कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इसलिए जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि आप फिर उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे निर्णय लेने में। और जब आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तब फिर आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि अभी तक जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, क्या इस लेक्चर को सुन लेने के बाद हिस्ट्री के प्रति मेरी धारणा बदली है, या इससे पहले आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या अब हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है, या जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या बातें ज़्यादा समझ में आ रही हैं, चीज़ें ज़्यादा दिमाग में स्पष्ट हो रही हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा समय तक दिमाग में मौजूद रह रही हैं, और साथ ही यह भी कि क्या आप हिस्ट्री पर अपनी तरफ से कुछ सोच पा रहे हैं। ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं इनके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कीजिए। भले ही आप सतही तौर पर ही करें, अभी मैं बहुत गहरे मूल्यांकन की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज ऐसा करें। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद फिर मेरा एक अनुरोध है, इस अनुरोध को आप गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए, और वो ये कि मुझे बताइए भी कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कितना सफल रहा है। और हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं वो इसी पैटर्न पर प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट के पहले उस सब्जेक्ट की जो रियल फिलॉसफी है उसे बताया न गया हो। उसे बताया गया है कैसे आप इसका उपयोग करेंगे जीवन के लिए, कैसे ये जरूरी है, कैसे सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, ये सारी बातें सामने रखने की कोशिश की गई है। और जब स्टूडेंट इस आधार पर फिर आगे के सब विषय को पढ़ते हैं, उसी विषय को, तो उनके लिए वही रास्ता बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, प्लीज मेरी बात मानिए, एक बार ऐसा कीजिए, अगर आपको ठीक न लगे तो फिर आप उसे छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए देवरिया उत्तर प्रदेश के हैं अजीत कुमार विद्यार्थी, उन्होंने एडमिशन लिया है। तो अजीत, आपका मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं सौरभ प्रताप दिल्ली विश्वविद्यालय से, डॉली झा मधुबनी बिहार से, अजय लखनऊ से, और भास्कर शर्मा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।